प्रयोग का शास्त्र बनाम शास्त्र का प्रयोग। नाट्य अनिवार्यतः प्रयोग है और शास्त्र उसका विधान, अतः नाट्य शास्त्र का अर्थ हुआ प्रयोग का विधान। अर्थात नाट्य शास्त्र नाट्य कर्म की ऐसी आचार संहिता है जिसका अनुपालन करने पर ही किसी नाट्य प्रयोग की सफलता या सार्थकता सिद्ध हो सकती है। संहिता या शास्त्र का उल्लंघन प्रयोग की कलात्मकता को दूषित कर सकता है और उसकी प्रामाणिकता संदिग्ध हो सकती है। सतही तौर पर इसका यह अर्थ निकाला जा सकता है कि नाट्य का हर प्रयोग कठोर अनुशासन में निबद्ध होना चाहिए और अनुशासन की अवमानना करने पर नाट्य का प्रयोग कलात्मकता के निकष पर खरा नहीं उतरेगा। सामाजिक, राजनीतिक और कलात्मक मूल्यों के निरंतर बदलते हुए संदर्भों के बावजूद नाट्य का प्रयोग उन्हें कठोर अनुशासनों का अनुपालन करने के लिए बाध्य है। दूसरे शब्दों में नाट्य प्रयोग यह संहिता या शास्त्र भी एक ऐसा ब्रह्मवाक्य है जिसके साथ किसी किस्म की कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। छेड़छाड़ करने के यत्न में उसकी अस्मिता खंडित हो जाएगी। यानी नाट्य शास्त्र भी धर्मशास्त्रों की तरह एक ऐसी संहिता है जिसकी अंतिम व्याख्या कोई शास्त्रज्ञ ही कर सकता है, प्रयोक्ता नहीं। प्रयोक्ता पर शास्त्र का यह अंकुश अंतिम सर्वमान और सार्वकालिक है। इस अवधारणा ने नाट्य शास्त्र की अस्मिता की रक्षा करने के बजाय उसे प्रयोग की सार्वकालिक शक्ति से पूरी तरह वंचित कर दिया। नाट्य शास्त्र को धार्मिक अनुष्ठान के रूप में समादृत करने की चेष्टा ने उसके मूल स्वरूप को इतना अधिक संश्लिष्ट और जटिल कर दिया कि उसकी प्रयोग धर्मिता ही नष्ट हो गई। परिणामतः नाट्य शास्त्र हमारे देश के प्रयोक्ताओं के लिए मात्र एक ऐतिहासिक धरोहर बनकर रह गया जिसकी वर्तमान परिस्थितियों में कोई प्रासंगिकता नहीं थी, क्योंकि लगभग 2500 वर्ष पूर्व लिखा गया यह ग्रंथ वर्तमान समय के लोक की प्रचलित मान्यताओं और उनके कार्य व्यापार के संबंध में मात्र संदर्भ ग्रंथ ही था। किंतु नाट्यशास्त्र के प्रणेता भरत मुनि का मंतव्य ठीक इसके विपरीत था। वे प्रयोग की नवीनता के अन्यतम पक्षधर थे, इसीलिए उन्होंने नाट्यशास्त्र के प्रथम अध्याय में ही स्पष्ट रूप से कहा, नाना भावोपसंपन्नम नानावस्थान्तरात्मकम लोकवृत्तानुकरणम नाट्य में तन्मयाकृतम। अर्थात यह नाट्य कर्म विभिन्न प्रकार के भावों से सम्मिश्रित अनेकानेक अवस्थाओं के मर्म को स्पर्श करने वाला तथा लोकवृत्त का अनुकरण करने वाला होना चाहिए। इस श्लोक का दूसरा चरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोकवृत्त अर्थात लोक में प्रचलित यह लोक से संबंधित कथाओं को प्रतिबिंबित करने वाला नाट्य कर्म ही शास्त्र सम्मत है। लोक से संबंधित कथाएं केवल पुराण आदि में ही नहीं है, वरन समाज, मानव समाज में निरंतर होती उथल पुथल, विकास और विनाश, प्रेम और घृणा, उत्कर्ष और अपकर्ष से संबंधित वे सभी घटनाएं हैं जो लोक को नई शक्ति, नई ऊर्जा और नई चेतना देने में समर्थ हैं। मानव समाज के उत्थान के इतिहास के प्रेरक प्रसंग ही नाट्य कर्म का आधार है। यदि यह आधार गतिशील है, स्थिर और चिरस्थायी नहीं है, तो यह नावीन्य को प्रदर्शित करने की विधि कैसे चिरस्थायी हो सकती है? फिर नाट्य कर्म में प्रयोग तत्व क्या है, उसकी अर्थवत्ता क्या है? प्रयोग तो अनिवार्यतः नया होगा। यदि उसमें कुछ भी नया नहीं है तो वह प्रयोग हो ही नहीं सकता, यह पृष्ठ पेषण होगा। किसी भी अनुशासन का विधान पृष्ठ पेषण की अनिवार्यता घोषित करता है, जबकि प्रयोग इस अनुशासन की मूल आत्मा की रक्षा करते हुए अपनी नई राह अन्वेषित करता है। सत्य तो यह है कि भरत मुनि नाट्यशास्त्र की रचना करते समय इस तथ्य से दूरी एवं पूरी तरह अनभिज्ञ थे कि प्रयोग धर्मिता के संदर्भ में कोई भी शास्त्रीय विधान अंतिम नहीं हो सकता। नए लोक वृत्त पर आधारित प्रयोग का यह शास्त्र अंतिम नहीं हो सकता, क्योंकि प्रयोग एक सृजन कर्म है और सृजन की सीमाओं में बद्ध नहीं किया जा सकता है, उसे अंतिम रूप से उद्घोषित नहीं किया जा सकता। छठे अध्याय का एक श्लोक जिसे नाट्य शास्त्र के संबंध में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त हुई है, यही तथ्य उद्घाटित करता है। दस अध्याय के आरंभ में ही छठा और सातवें श्लोक इस प्रकार हैं, न शक्यमस्य नाट्यस्य गंतुमंतु कथंचन कस्माद्वहुत्याज्ञानं शिल्पानां वाप्यनंतः एकस्यापि नवै शक्यस्तवंतो ज्ञानारण्यस्य हि गंतुहिम पुनरेन्यस्याम ज्ञानार्थम तत्वतः। अर्थात हे मुनिजनों, इस नाट्य विधा का किसी भी प्रकार अंत पाना संभव नहीं है, क्योंकि ज्ञान तथा शिल्प का संसार अनंत है। दूसरा, जबकि अथाह ज्ञान और शिल्प के किसी एकात्म विषय का ही समग्र आकलन संभव नहीं है, जो कि समुद्र के समान अत्यंत विस्तीर्ण और अपार है, तब सभी ज्ञानों के तात्विक आशय और उनके समग्र तत्वों के निष्कर्ष या उनके अंतिम छोर तक पहुंचना कैसे संभव हो सकता है। ज्ञान और शिल्प की सीमता को लक्षित करने के बाद ही भरत मुनि अपने नाट्यशास्त्र में संक्षिप्त निबंधन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रयोग की सार्थकता कुछ नया सृजन करने की क्षमता पर निर्भर करती है। यदि नाट्यकर्म सृजनात्मक है, रचनात्मक है, तो फिर उसे अनिवार्यतः नई संभावनाओं की खोज करनी होगी। नई संभावनाएं अपने समय के साथ नित नवीन प्रकल्प खोजती है। यदि वह संभावनाएं लोक सम्मत हो तो उन्हें स्वीकार करना न केवल युक्त संगत है बल्कि अपरिहार्य भी है। मनुष्य के आचार व्यवहार, कर्म, कलाओं के शिल्प और बौद्धिक मान्यताओं में जो सातत्य परिलक्षित होता है, वही नाट्य प्रयोग में परिलक्षित होना चाहिए। ऐसा न होने पर कोई भी नाट्य प्रयोग लोक के द्वारा मान्य नहीं होगा। नाट्य शास्त्र में संधियों के निरूपण करते हुए कहा गया है, अनेक शिल्प जातानी नैक कर्माणि क्रियाणि च तान्य शेषाणि रूपाणि कर्तव्यानि प्रयोक्तिभृति। अर्थात नाट्य के प्रयोक्ताओं को अनेक शिल्पों का, अनेक कार्य व्यापारों का अनेक रूप में अपने प्रयोगों में सम्मिष्ट करते रहना चाहिए, जो मनुष्यों द्वारा सदा नवीन और अनंत रूपों में सर्जित किए जाते हैं। नाट्यशास्त्र की इस अद्भुत लचीलेपन को देखकर समझा जा सकता है कि प्रयोग का यह शास्त्र प्रयोगिता के समय सापेक्ष होने के लिए प्रेरित करता है। नाट्यशास्त्र रंगमंच के शिल्प विधान, अभिनेताओं के अंग संचालन और सामाजिक परिवर्तनों को कलात्मक रूप से प्रतिष्ठित करने की स्वीकृति ही नहीं देता, वरन उसकी अनिवार्यता भी घोषित करता है। नाट्यशास्त्र का यह लचीलापन और परंपरा के नैरंतर्य के साथ उसे संबद्ध करने की विलक्षणता ही उसकी सबसे बड़ी विशेषता है, जो उसे संसार के अन्य सभी नाट्य संबंधी प्राचीन ग्रंथों से अलग करती है और उसे विशिष्ट बनाती है। नाट्यशास्त्र का यह वैशिष्ट्य इसके अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक में अपनी संपूर्ण अर्थवत्ता के साथ उल्लेखित हुआ है, जो भरत मुनि की अवधारणाओं को कालातीत बनाता है। एवं नाट्य प्रयोगे बहुविधि विहितम कर्मशास्त्राण प्रणीतम नोक्तम यच्चात् लोकाद नुकृतिकरणात् संविभाव्यम विधिज्ञेय। अर्थात इस प्रकार मैंने नाट्यशास्त्र के द्वारा निर्दिष्ट कर्मों के नाट्य प्रयोग की अनेक विधियों का वर्णन किया है। इसमें जो बातें कहने से बच गई हों या न कही जा सकी हो, उन्हें विद्वज्जन लोक में विद्यमान विषयों तथा कार्यों का अवलोकन कर उनकी समस्त संभावनाओं सहित अपने प्रयोग में समाविष्ट कर ले। इसी श्लोक का सबसे अधिक महत्वपूर्ण सूत्र है, लोकाद अनुकृति करणात् संविभाव्यम विधज्ञेय। लोक में प्रचलित कर्मों की अनुकृति की संभावनाओं को विधान का ज्ञान रखने वाले विद्वज्जन समाविष्ट कर लें। ये संभावनाएं अनंत है और निरंतर परिवर्तित होते सामाजिक लक्षणों का समावेश उस प्रयोग को जीवंत और लोक के लिए हितकारी तथा सुग्रह बनाता है। सबसे प्रमुख प्रश्न यह है कि प्रयोग और शास्त्र का अंतर संबंध क्या है। यदि नाट्य एक प्रयोग है, जैसा कि भरत मुनि बार बार कहते हैं, तो क्या वह हजारों वर्ष पहले की सामाजिक एवं कलात्मक मान्यताओं और निष्कर्षों पर ही टिका रहेगा? क्या उसमें किसी प्रकार के संशोधन, परिवर्धन अथवा परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है? क्या हमारा आधुनिक साहित्य यथा कविता, कहानी, निबंध आदि की श्रेष्ठता के निकष आज भी वही हैं जो भास, कालिदास तथा भवभूति के समय में थे? क्या हमारा शास्त्रीय संगीत और नृत्य आज भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा नाट्यशास्त्र या उसके बाद कोहलीमय, दत्तिल के दत्तिलम, शारदातनय के भाव प्रकाशन, कल्लड़ के राजतरंगिणी, मतंग के बृहद्देशी, सारंगदेव के संगीत रत्नाकर आदि ग्रंथों में हुआ है? भरतमुनि के नाट्यशास्त्र के अनेकानेक व्याख्याकारों में बहुत से ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने अपने समय के अनुसार उसकी पुनर्व्याख्या की है। इसी क्रम में महत्वपूर्ण कड़ी आचार्य बात खंडे थे, जिन्होंने आधुनिक भारतीय संगीत को नया कलेवर प्रदान किया। ये सभी आचार्य और ग्रंथकार केवल व्याख्याकार ही नहीं थे, वरन स्वयं भी महान संगीतज्ञ और रचनाकार थे, किंतु नाटक के क्षेत्र में संभव नहीं हुआ। आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक, अभिनव गुप्त के अभिनव भारती और ध्वन्यालोक लोचन, हेमचंद्र के काव्यानुशासन, रामचंद्र गुणचंद्र के नाट्य दर्पण सूत्र, धनंजय के दशरूपकम आदि ग्रंथों के बाद नाट्य के प्रयोग पक्ष पर नए से विचार करने वाले आचार्यों का लोप होने लगा। नाट्यशास्त्र के व्याख्याकार श्री बाबूलाल शुक्ल शास्त्री ने इस संबंध में लिखा है। आचार्य अभिनव गुप्त ने वैसे नाटक के सभी संध्यंग, नाट्यांगों आदि के उदाहरण अपनी प्रसिद्ध व्याख्या अभिनव भारती में दे दिए थे। नए सिद्धांतों को भी उद्भावित किया था और अलंकार शास्त्र के सदृश नाट्यसम शास्त्रीय तत्वों को दार्शनिक आधार देकर विवेचित भी किया था, किंतु किसी अन्य आचार्य ने आगे चलकर नाट्य के तत्वों का विशद विवेचन या नवीन सिद्धांतों का उद्भावना नहीं किया, केवल उनको संक्षिप्त करने के प्रयास में ही लगे रहे। विगत अनेक शताब्दियों में राजनीतिक, सामाजिक और भौगोलिक कारणों से भारतीयता की भाषा में परिभाषा में बुनियादी परिवर्तन हुए हैं। भाषा, भूषा, आचार व्यवहार सब कुछ वैसा ही नहीं है जो सदियों पूर्व था। हमारे आज के समाज में जन्म, मरण, विवाह जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर होने वाले अनुष्ठानों में गहरा परिवर्तन लक्षित होता है। यदि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाए तो यह तथ्य उजागर हो जाता है कि आज का भारतीय समाज एक बहुत लंबी यात्रा करके ऐसे मुकाम पर पहुंचा है जहां परंपरा का सातत्य तो अवश्य है, किंतु एकदम वैसा ही नहीं है जैसा सदियों पूर्व था। हमारे आज के संस्कारों पर नित नवीन पड़ने वाले दबावों को, सामाजिक ढांचों में टूटते बिखरते सूत्रों को नए रूप में सहेजते संवारते और रखने का निरंतर प्रयास हुआ है। धार्मिक सहिष्णुता और वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणाओं को बार बार नए सिरे से व्याख्यात किया गया है। केवल संभ्रांत समझे जाने वर्ग ने ही नहीं, बल्कि सुदूर अंचलों में रहने वाले जन समुदाय ने भी अनेक अंधविश्वास और व्यर्थ सिद्ध हो जाने वाली रूढ़ियों को सांप के केंचुल की तरह उतार कर फेंक दिया है। ऐसी स्थिति में आज के समाज, आज के लोग और आज की परिस्थितियों में हमारे नए मूल्य आज के रंगमंच पर किस तरह प्रतिबिंबित हो सकते हैं, यह प्रश्न हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसका एक उत्तर हमारी जिज्ञासा को शांत करने में काफी समर्थ हुआ है। पिछले अध्यायों में उन कारणों को स्पष्ट किया गया है जिसके परिणाम स्वरूप हमारे देश का नाट्यधर्मी रंगमंच लगभग लुप्त हो गया और देश के अधिकांश अंचलों में लोकधर्मी नाट्य परंपरा किसी न किसी रूप में निरंतर प्रवाह मान रही। हमारे देश के अधिकांश नाट्य निर्देशकों ने उन पारंपरिक नाट्य रूपों को कोई तहरीज नहीं दी जिनका प्रत्यक्ष संबंध लोक से था। भारतेंदु हरिश्चंद्र और रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद समकालीन रंगमंच के प्रमुख प्रयोक्ता के रूप में पहले हस्ताक्षर हबीब तनवीर के ही हैं, जिन्होंने लोक से शक्ति प्राप्त करके प्रयोग से शास्त्र तक की अविराम यात्रा की है। ऐसा नहीं कि इस दिशा में शंभूमित्र, द्वीना पाठक, शांता गांधी, कावलम नारायण पणिक्कर आदि का महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहा, किंतु लोक के माध्यम से शास्त्र के सारभूत तत्वों को ग्रहण करने की जो भावभूमि हमें हबीब तनवीर के नाट्य प्रयोगों में मिलती है वह अन्यत्र दुर्लभ है। इस अध्याय में विशेष रूप से संस्कृत नाटकों की उन प्रस्तुतियों की चर्चा की जा रही है जिन्हें हबीब तनवीर ने एक के बाद एक विफलताओं के बावजूद अपने निरंतर प्रयोगों के लिए में किए गए संशोधन, शोधन और परिवर्तन के द्वारा ऐसी प्रणाली खोज निकाली जो उन्हें लोक से शास्त्र तक जोड़ती है। यह उनकी निजी मुहावरे के अत्यंत अनुकूल तो है ही, साथ ही उसमें नाट्य शास्त्र के उन सभी महत्वपूर्ण तत्वों का समावेश भी है जो उन्हें विशुद्ध रूप से भारतीय नाट्य परंपरा के शीर्षस्थ रंगकर्मी के रूप में प्रतिष्ठित करता है और विश्व रंग परिदृश्य पर भारतीय समकालीन पारंपरिक रंगमंच की अस्मिता की पुनर्स्थापना करता है। सबसे पहले शूद्रक के मृच्छकटिक की बात। यद्यपि इस नाटक के बारे में पिछले अध्यायों में निरंतर विस्तार से कहा जा चुका है, लेकिन यहाँ केवल उन्हीं संदर्भों का उल्लेख करेंगे जो उनके प्रयोग धर्मिता से संबंधित है। अपने प्रथम प्रयोग के लिए उन्होंने मृच्छकटिक को क्यों चुना, इस संबंध में उनका कथन है। संस्कृत के और किसी नाटक के बदले मृच्छकटिक को चुनने का कारण उसकी कथा थी। समाज के निचले तबके के लोगों, चोरों, उचक्कों, जुआरियों और बदमाशों ने मुझे अपनी ओर खींचा। चरवाहे आर्यक की लीडरशिप और चोर शार्विलक के एक नाचने गाने वाली दास स्त्री से प्रेम वगैरह ने मुझे प्रभावित किया और मैंने इन दृश्यों को काफी अहमियत दी। इस नाटक के संबंध में एक अन्य स्थल पर कहा गया है, भास के दरिद्र चारुदत्त की मूल कथा में शर्विलक की दिलचस्प कहानी जोड़कर शूद्रक ने अपने सहकार और नाटक मृच्छकटिक को एक नया रूप दिया। संस्कृत के आलोचक तो इसकी निंदा करते रहे, लेकिन दरअसल प्रहसन में चार चांद तक गए। चुनाचे अब एक तरफ चारित्र और गणिका वसंत सेना की प्रेम कथा और दूसरी तरफ अत्याचारी राजा पालक के विरुद्ध सर्विलक का राजनीतिक आंदोलन है। आखिर में दोनों कामयाब होते हैं। आर्यक गोपालक को सर्विलक की पार्टी राजसिंहासन पर बिठा देती है और वसंत सेना जिसकी राजा का साला बजाहिर हत्या कर देता है बचा ली जाती है और उसका चारित्र से मिलन हो जाता है। मृच्छकटिक के रचनाकार शूद्रक स्वयं एक राजा थे, इसके बावजूद उन्होंने भास के अधूरे समझे जाने वाले इस नाटक को अपनी रचना का आधार बनाया, जो एक अत्याचारी राजा और उसके कामुक कुटिल एवं षड्यंत्रकारी साले की कहानी है। नाटक का नायक चारित्र एक निर्धन ब्राह्मण है जो विवाहित है और एक पुत्र का पिता होते हुए भी गणिका वसंत सेना से प्रेम करता है। चारित्र के साथी और सहायक समाज के सबसे निचले वर्ग के कहे जाने वाले चरित्र हैं जो अंततः शासन का तख्ता पलट देने में समर्थ होते हैं। इस कथा को रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए एक सुविधाजनक रास्ता यह हो सकता था कि हबीब तनवीर उस समय तक प्रचलित और प्रतिष्ठित ब्रिस्टियन मुहावरे में ढाल कर पेश कर देते। अपनी यूरोप यात्रा के बाद वे इस शैली के बखूबी परिचित हो चुके थे। यह कथा भी ब्रिस्ट शैली में प्रस्तुत किए जाने के लिए बहुत उपयुक्त है, परंतु हबीब तनवीर ने यह सरल रास्ता नहीं अपनाया और संस्कृत के इस नाटक प्रस्तुत करने के लिए आलेख में से ही सूत्र खोजने शुरू किए। इस नाटक के बारे में मान्यता है कि यह शास्त्रीय नाटक है और इसे लोक शैली में प्रस्तुत किया जाना युक्त संगत नहीं। हिंदुस्तानी थिएटर के बैनर में सन 1958 में पहली बार प्रस्तुति के अवसर पर हबीब तनवीर ने कहा, हम अपने नाटकों और रंगमंच को शास्त्रीय शैली और लोक शैली के दो विभिन्न जलरुद्ध खंडों में विभाजित करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, इसलिए नाटकशास्त्र के सामान्य निर्देशों का अनुपालन करते हुए हमने अपने नाटक के प्रतिपादन में सहायता देने वाले रंग भाषिक तत्वों में छूट ली जो उसे कलात्मक एकरूपता में ढाल सकने में समर्थ भले ही हुई यह शास्त्रीय हो लोक हो या विदेशी रंग भाषा। हम अनुभव करते हैं कि चीनी ओपेरा तकनीक, जापानी मुखौटे, कथकली रूप सज्जा, ब्रिस्ट का अलगाव सिद्धांत या मात्र एक कुशल अभिनेता द्वारा आंगिक भाषा का प्रयोग आदि हमारे उद्देश्य पूर्ति में सहायक हो सकते हैं तो हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। हबीब तनवीर की टिप्पणी इसलिए और भी महत्वपूर्ण है कि आज के लगभग 50 वर्ष पूर्व वे जिस रंग भाषा की खोज कर रहे थे उसके सभी प्रमुख तत्व 50 वर्ष नाट्यशास्त्र से ही निश्रित थे। इन विगत वर्षों में इस बात के अनेक प्रमाण प्राप्त हो चुके हैं कि जापान का नो, चीन का पीकिंग ओपेरा और ब्रिस्ट के अलगाव के सिद्धांत का गोमुख नाट्यशास्त्र ही है। हाल ही में कालिदास अकादमी उज्जैन द्वारा एशियाई रंगमंच और नाट्यशास्त्र विषय पर आयोजित परिचर्चा में इसका विस्तृत विवेचन किया गया है। लेकिन अपने रंगकर्म के आरंभिक दौर में हबीब तनवीर अपनी पैनी दृष्टि से जिस स्तर पर पहुंच गए थे वह श्लाघनीय है। मिट्टी की गाड़ी प्रस्तुति का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है इसका दृश्यबंध। विज्ञान की अनेक नई उपलब्धियों ने पश्चिम के यथार्थवादी रंगमंच को नई तकनीक सुविधाओं से लैस कर दिया था, लेकिन हबीब तनवीर को मृच्छकटिक के दृश्यबंध की समस्या का समाधान इससे नजर नहीं आया। उन्होंने कहा, मैं कागज पर मिट्टी की गाड़ी को यूरोप भर में प्रस्तुत करता रहा था। मैंने तकरीबन उसके कम से कम 12 दृश्यबंध ड्राइंग बनाए होंगे और हर बार कहानी के बहाव ने उसने गतिरोध पैदा किया। मृच्छकटिक के पहले अंक में जो कि 10 दृश्यों में विभाजित है सूत्रधार और नटी बातें कर रहे हैं चारित्र को परिचित कराते हुए, और चारित्र बाहर से कहीं से आता है और अपने घर में जाता है। कुछ दृश्य वहां बनता है, वही दृश्य सड़क पर भी जारी रहता। अचानक आप राजनर्त की बसंत सेना को देखते हैं और शकार तथा उस सेवक दल को समूचे सड़क पर बिखरे हुए और बिना किसी तरह बिना दृश्य के तोड़े बसंत सेना चारित्र के घर के बाहरी भाग में आती है और घर के भीतर घुस जाती है। दृश्य की हलचल घर के भीतर भी जारी है और बाहर भी, भीतर और बाहर एक साथ, यही पहला दृश्य है। दूसरे दृश्य में लोग एक जुआरी का पीछा कर रहे हैं, बस बाहर सड़क पर आ जाता है, वापस लौटता है और एक मंदिर में चला जाता है, पीठिका पर मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता है। लोग यहाँ वहाँ देखते उसका पीछा करते हैं, वह उन्हें धोखा देकर खिसक जाता है और बसंत सेना के घर में घुस जाता है, उससे बात करता है और वह बाहर आती है और वहाँ का हो हल्ला सुनती है। सब एक दृश्य में, घटनास्थल बदला नहीं गया है। यह सूत्र हवी तन्वी के लिए सबसे महत्वपूर्ण था, इसलिए उन्होंने सारे दृश्य बंध एक एक कर काट दिया और अंत में केवल एक चबूतरा रह गया, जिससे यह सिद्ध हो गया कि संस्कृत नाटकों में कल्पना का इतना अधिक सहारा लिया जाता था कि अभिनेता खाली मंच पर अपनी अभिनय क्षमता के द्वारा दर्शक के मन में उन चित्रों को प्रतीकों की तरह अभिव्यक्त करने में समर्थ थे। पीटर ब्रुक की पुस्तक द एम्प्टी स्पेस में भारतीय रंगमंच की इस विलक्षणता का विस्तृत विवेचन है। हबीब तन्वी की यह जिज्ञासा मिट्टी की गाड़ी के आलेख से शुरू होकर उसके दृश्यांकन की समस्याओं के जिस समाधान तक पहुंचती है वह अनायास उन्हें नाटकशास्त्र तक पहुंचा देती है। सन 1978 में जब उन्होंने इस नाटक की पुनर्प्रस्तुति की तो उसमें उस पक्ष पर सबसे अधिक जोर दिया गया जो उनकी पहली प्रस्तुति का सबसे विवादास्पद पक्ष था। इस प्रस्तुति में अधिकांश आर्य अभिनेता थे जो अपने श्रेष्ठ अभिनय के लिए रंगमंच पर महत्वपूर्ण स्थान बना चुके थे। इनमें राजेंद्र नाथ, कुसुम बहल, श्याम अरोड़ा, क्षमा जैदी, इर्शाद पंजतन, रईस मिर्जा, केवल कपूर, हरजीत, अशोक सरीन, रेखा रेवरी, ओपी ढींगरा, सरवत खान जैसे अनेक लोग शामिल थे, जिनके बाद छत्तीसगढ़ के वे अभिनेता भी थे जिन्होंने बाद के वर्षों में नया थिएटर की गरिमा मंडित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें ठाकुर राम, मदन लाल, लालू राम, बुलवा राम आदि प्रमुख थे। शहरी और लोक अभिनेताओं की विभिन्न शैलियों में पूरी तरह सामंजस्य स्थापित न हो पाने के कारण ही उस प्रस्तुति के प्रभाव पर बुरा असर पड़ा था। हबीब तन्वीर ने अपने प्रयोग की इस विफलता से सीख कर अगली प्रस्तुति में सारे अभिनेता छत्तीसगढ़ के ही लिए। गीत इसमें भी नियाज हैदर के ही थे और उनकी धुनें भी कमोवेश वही थी जो पहली प्रस्तुति में थी। शेष सब कुछ बदल गया। हबीब तन्वीर ने इस प्रस्तुति में सूत्राधार और शार्वलिक की भूमिका के बजाय शकार की भूमिका की और उसमें खूब जमे। रेखा रेवड़ी की बजाय बसंत सेना की भूमिका फिदाबाई ने अदा की और चारुदत्त की भूमिका में श्याम बहादुर की बजाय चैतराम। मैत्रेय की भूमिका राजेंद्र नाथ के स्थान पर गोविंद राम ने की और नट नटी भुलवा और माला थे। अभिनेताओं के इस फेरबदल का परिणाम अत्यंत सुखद रहा और पूरे नाटक के समग्र प्रभाव में एक नई जीवंतता, प्रवाह और सहजता का बोध हुआ। फिर 1979 में हबीब तन्वीर ने भवभूति की उत्तर रामचरित का मंजन किया और छत्तीसगढ़ी अभिनेताओं को ही प्रस्तुति का मूल आधार बनाया। लेकिन ये कलाकार संस्कृत भाषा में तो सहज अभिनय कर ही नहीं सकते थे, अतः हबीब ने नाटक की भाषा सरल हिंदी और छत्तीसगढ़ी कर दी। भाषा के कारण लोक कलाकारों के अभिनय में भी एक सहजता आ गई जो हबीब तन्वीर का अभिष्ट थी। लेकिन प्रस्तुति का यह आश्वास संस्कृत के विद्वानों और आचार्यों को स्वीकार नहीं हुआ। उज्जैन के कालिदास समारोह प्रदर्शित इस नाटक की प्रस्तुति के संबंध में नाट्यशास्त्र के व्याख्याकार श्री बाबूलाल शास्त्री जी ने लिखा, जनपदीय नाट्य रूपों को किसी भी स्थिति में शास्त्र सम्मत लोक धर्मी का उदाहरण नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार यह भी समझने की बात है कि नाट्य प्रयोग जिसे धारण करता हो वही धर्मी होता है। तो नाट्य प्रयोग एक ओर तो अनुकरण मूलक होगा और दूसरी ओर कल्पना मूलक भी। नाटक फिर चाहे संस्कृत का हो या ग्रामीण भाषा का, अपने अभिनय के लिए उन्हें स्वाभाविकता के साथ साथ प्रतीकात्मकता का आधार लेना ही पड़ेगा। परंतु स्वाभाविक अभिनय विधान को लोकधर्मी का प्रतीकात्मक विधि को नाट्यधर्मी मानकर प्रयोग की समस्या का भरतमुनि ने समाधान निकाला था। अतः देशी नाट्य पद्धति के नाम पर अभिनय व्यापार के प्रयोग में प्रविष्ट कर श्री हबीब तन्वीर ने भवभूति के जिस परिनिष्ठित रूपक उत्तर रामचरित नाटक का भोंडा प्रदर्शन उज्जैनी कालिदास समारोह ने किया था वह किसी भी प्रकार रंगकर्मिता के प्रतिष्ठित लोक परंपरा का अनुगम नहीं करता, न ही अभिनय की एक शैली कस कर उसे भारतीय परंपरा से अनुगत वस्तु माना जा सकता है। इसमें स्थित अस्वाभाविकता को लोकवृत्ति का विशेष या अनुगत रूप भी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि वैसा रहने पर होने वाला नाट्य प्रयोग एक अतहीन या सस्ता मनोरंजन का रूप लेकर उसे अधम श्रेणी की ओर ढकेल देगा। उपरोक्त उद्धरण का अर्थ संस्कृत विद्वानों का पर कोई टिप्पणी करना नहीं, केवल इतना ही यह कि वे शास्त्र के प्रयोग की ओर लौटने का प्रयत्न कर रहे थे जबकि हबीब तन्वीर की राह प्रयोग से शास्त्र तक पहुंचने की थी। प्रयोग और शास्त्र के अंतर संबंधों के कलात्मक सूत्रों की खोज और पुनर्स्थापना के कारण हबीब की रंग प्रक्रिया जटिल तो अवश्य हुई, लेकिन उसने अपने समाज के प्रचलित और अन्य रंग तत्वों को एक मजबूत जमीन से जोड़ दिया। इस संबंध में हबीब तन्वीर ने कहा, संस्कृत नाटकों को मंचित करने की प्रेरणा मुझे किसी ग्रंथ या शास्त्र से नहीं मिली। मैं किन्हीं पुस्तकों का अनुगमन करने का प्रयत्न नहीं कर रहा था। एक तरफ से यह उन पाश्चात्य विद्वानों के विचारों की प्रतिक्रिया थी जिन्होंने संस्कृत नाटकों के बारे में जो कुछ कहा था उसका अनुमोदन उस समय के भारतीय विद्वानों ने भी कर दिया था। उन्होंने उन नाटकों की संवेदना और काव्यात्मकता को तो स्वीकार किया, लेकिन उनके नाटक व्याकरण के बारे में उनका कहना था कि संस्कृत नाटककार उसके बारे में बहुत कम जानते थे। विडम्बना यह है कि जिन भारतीय विद्वानों ने उनके मत का अनुमोदन किया वे यह प्रतिपादित करने में नितांत असमर्थ थे कि पाश्चात्य विद्वान इस दिशा में भारी भूल कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय विद्वान स्वयं भी रंगमंच के बारे में कुछ नहीं जानते थे। वे सभी संस्कृत के नाटकों में अरस्तु की तीन एकताओं वाले तत्वों की खोज कर रहे थे। वे रस सिद्धांत की बात तो करते थे, लेकिन यह नहीं समझ पाए कि भरतमुनि केवल एक ही सारतत्व की बात कर रहे थे जिसे उन्होंने रस की संज्ञा दी। दूसरी ओर ऐसा नहीं कि संस्कृत नाटककार समय स्थान और कार्य व्यापार की एकताओं से अपरिचित थे, बल्कि उन्होंने जानबूझकर इन तीन एकताओं को तोड़ा। उनके लिए कथा का प्रवाह सर्वोपरि था। मैंने संस्कृत नाटककारों को उनके मूल स्वरों में स्तुत्य समझा और उनकी प्रतिनिष्ठा करते हुए उसी रूप में प्रयोग करने का प्रयत्न किया। अरस्तु के सिद्धांतों के प्रति मेरे मन में कोई अनुराग नहीं था। हबीब तंजुमी द्वारा दिए गए किए गए संस्कृत नाटक के प्रयोग धर्मिता और उन्हें मंचित किए जाने की विधि विधान को नाट्यशास्त्र के अधिकांश विद्वानों ने यदि स्वीकार किया तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है। संस्कृत रंगमंच की परंपरा के बहुत बड़े गत्यावरोध के कारण ऐसा हुआ, किंतु आश्चर्य तो यह है कि इन भारतीय विद्वानों ने भाज जैसे महानाटककार की रचनाओं में भी ऐसे दोष गिनाए जो भारतीय रंग परंपरा की सबसे बड़ी विशिष्टता है और पाश्चात्य रंग अवधारणाओं से उन्हें एकदम अलग करती है। भास के नाटकों का अनुवाद और व्याख्या करने वाले संस्कृत एक आचार्य ने भास के नाटक के बारे में कहा, भास के नाटकों में कुछ श्रुतियां भी मिलती हैं, जैसे निष्क्रम और भविष्यति आदि द्रुत गति वाले नाटक के निर्देशकों का आधिक्य इनकी विशिष्ट वास्तविकता में संदेह उत्पन्न कर देता है। इनके नाटकों में कलान्विति का भी अभाव है, जिसे स्वप्न वासुदत्ता चारुदत्त बालचरित अभिषेक आदि नाटकों में स्पष्ट देखा जा सकता है। कृष्ण के निर्जीव शास्त्रार्थों का मानव रूप रंगमंच उपस्थित होना अस्वाभाविकता उत्पन्न कर देता है। नाट्यशास्त्र द्वारा वर्जित दृश्यों को भी रंगमंच पर दिखाया गया है। अपरिचित पात्रों का सहसा प्रवेश नाट्यशास्त्र के विरुद्ध है, इससे अस्वाभाविकता आ गई है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि भास के नाटकों के रंग विधान में जिन तत्वों के दोष की तरह परिभाषित किया गया है वस्तुतः वे ही भाषी नाटकों की सबसे बड़ी विशेषताएं हैं। रंगमंच पर चित्रों का प्रवेश और प्रस्थान कलान्विति के अनुसार नहीं होता। नाटलेख में रस्तु की तीन एकताओं का निर्दर्शन भी नहीं है, क्योंकि यह नाटकीय घटनाओं को वास्तविकता का भ्रम प्रदान करने की युक्ति के रूप में नहीं बल्कि उसे पूरी तरह खंडित करने के लिए है। संस्कृत पंडितों ने पाश्चात्य नाट्य अवधारणाओं के निकष पर भाष किया अथवा अन्य संस्कृत नाटककारों के नाटकों को रखने के प्रयत्न में नाट्यशास्त्र की मूल अवधारणा को ही किनारे रख दिया। भास के नाटकों में विशेष रूप से बालचरित में श्रीकृष्ण के चक्र शंख शार्ग नंदन आदि अस्त्र शस्त्रों का मानवीकरण नाट्यशास्त्र की मूल अवधारणा के अनुरूप है, जो अनुकरणात्मकता के विपरीत भावानुकीर्तन के प्रयोग को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है। यही तत्व पाश्चात्य अवधारणाओं से भारतीय नाट्य अवधारणाओं को अलग करते हुए उसे विशिष्टता प्रदान करते हैं। संस्कृत पंडितों की यह भ्रामक दृष्टि ने भारतीय रंगमंच की पुनर्प्रतिष्ठा में अवरोध उत्पन्न कर दिया। कालिदास से पूर्व ही नहीं संभवतः नाट्यशास्त्र की रचना से ही पूर्व लिखे गए इन नाटकों का अनेक परवर्ती संस्कृत नाटककारों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। सच तो यह है कि विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में प्रवेश और निष्क्रमण की द्रुत गति ही उसे असाधारण रूप से विशिष्ट बनाती है और एक राजनैतिक घटना चक्र की से संबंधित नाटक के लिए विलक्षण भूमि तैयार करती है। तेजी से बदलती और बढ़ती हुई घटनाएं, चाणक्य और राक्षस के गुप्तचरों की सूचनाएं, उन सूचनाओं के आधार पर चाणक्य के तात्कालिक निर्णय और उनकी क्रियान्विति इस नाटक की ऐसी विशेषताएं हैं जो अन्यत्र दुर्लभ हैं। संस्कृत के पंडितों ने जिन्हें मंचीय दृष्टि से त्रुटि के रूप में देखा, एक निर्देशक के हाथों वही नाटक अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया। हबीब तंजुमी ने इस नाटक में अपने समय की राजनीति का प्रतिबिंब तो देखा, लेकिन इसके कथानक में कोई छूट लिए बिना है इस तरह प्रस्तुत किया कि दर्शक विशाख दत्त और हबीब तंजुमी के प्रयोजन को एक साथ आत्मसात कर सके। मुद्रा राक्षस की प्रस्तुति के संबंध में हबीब तंजुमी ने कहा, चौथी या पांचवी शताब्दी का लिखा हुआ मुद्रा राक्षस राजनीतिक नाटक है और एक बार फिर यह भी विश्व नाटकों की सुविधा में मिसाल है। इसका काव्यत प्रमुखता इसके प्लाट में निहित है। एक असाधारण रूप से मेधावी प्लाट इसकी अत्यंत जटिल संरचना को परिभाषित करता है। तब भी इसका सघन लक्ष्य बिल्कुल सदा है, जो समूची कथा का किसी भी तीर की तरह आर पार भेद देता है। वह अकेला लक्ष्य है युद्ध में शत्रु को निहत्था कर देना और उसे दोस्त के रूप में बिना आघात के जीत लेना। एक लेखक को इससे अधिक चुनौतीपूर्ण विषय वस्तु और क्या मिलेगी। तब भी नाटककार ने अपने नाट्य व्यवहार से उसे गहन अनुभव बना दिया है। वे राज रणनीति की लय बनाए रखते हैं। गर्भित गुत्थियों से ओतप्रोत और बेहद कुटिल दाव पेंच के माध्यम से वे शांति का अपना लक्ष्य हासिल कर लेते हैं। हम चाणक्य के दिमाग पर, दूसरे शब्दों में विशाखदत्त के दिमाग पर हैरान रह जाते हैं, जो चंद्रगुप्त के शत्रु राक्षस को पूरी तरह परास्त कर देता है, जो अंततः हमें समृद्ध ही करता है। शत्रु को उसके विपरीत खेमे में ला भर कर ही नहीं, बल्कि उसे एक महान निष्ठावान व्यक्ति, ऊंचे दर्जे के राजपुरुष और एक ऐसे मंत्री के रूप में प्रतिष्ठित कर जिसे संसार का कोई भी काबिल सम्राट पाना चाहेगा। हम पाते हैं कि साहित्यिक सौंदर्य की जिस सार्थत्व सरलता को हम इतना पसंद करते हैं, वह बेहद जटिल रास्तों की मांग करती है, और काव्यात्मक कल्पना की यह प्रपंजला और उदात्तता जरा मुश्किल से पाई जा सकती है। अंत में इसकी नाट्य शक्ति पर चमत्कृत होते हैं, जो हमें आह्लादित कर देती है। एक निर्देशक की तरह इस प्रांजलता और सरलता के अनुभव को जहाँ तक हो सके दृश्यात्मक ढंग से दर्शकों तक पहुँचाना मेरा लक्ष्य था। इसीलिए ही पूर्व रंग और उन घटनाओं की नाटक प्रस्तुति की गई है जो कृति में केवल शब्द में वर्णित है। इसीलिए यवनिका का प्रयोग भी किया, जिसको मैंने करीब 35 साल पहले इसी नाटक के पीलाल कृत अंग्रेजी संस्करण को करते हुए किया था। इसी तरह यहाँ आगमन और प्रस्थान के अनेक ऐसी रंग युक्तियों का प्रयोग है, जिसके कारण अरस्तु निर्दिष्ट तीनों अनुवृत्तियाँ टूट जाती है। केवल वह संगति बची रहती है जिसे भरत ने रस नाम दिया था। इस अत्यंत जटिल और द्रुतगामी कथावस्तु को सहज और सरल रूप से प्रस्तुत करना अत्यंत चुनौती भरा काम था। अनेकानेक गुप्तचरों में कौन किसका गुप्तचर है, यह नाटक पढ़कर आप समझ सकते हैं, लेकिन एक ही बार में तेजी से बदलते घटना चक्र में दर्शक तक इसे कैसे संप्रेषित किया जाए, यह काम आसान नहीं था। इसे आसान बनाने के लिए विवेकानंद ने क्या किया, यह उनके ही शब्दों में। मैंने जब नाटक को पढ़ा तो मैं उससे सम्मोहित हो गया। एक अद्वितीय राजनीतिक नाटक, मैं पहले पाठ में ही उसकी कथा वस्तु को समझ नहीं सका। मैंने गुप्तचरों को अलग अलग करके समझने के लिए उसे दोबारा पढ़ा, क्योंकि इस बात को जान लेना बड़ा कठिन है कि कौन किसकी जासूसी कर रहा है। यह बहुत उलझन भरा है, यह पूरे नाटक में चलता रहता है, यह मोहित कर लेता है। मैं जानता था कि दर्शकों के लिए उसे सुबोध बनाने की कुछ करना जरूरी था। उन नाटक को समझने के लिए दूसरी बार देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो जब मैंने उसे प्रस्तुत किया तो मैंने क्या चल रहा है उसको समझाने के लिए पद्धति सोच निकाली। मैंने दो प्रतीक चुने, एक चाणक्य के लिए, एक राक्षस के लिए, और दो रंग भी, और मैंने जासूसों को दो रंग के प्रदान दिए तो वे खास रंग के पहनावे और खास प्रतीक के साथ आएंगे और आप देख सकेंगे कि यह चाणक्य का आदमी है और ठीक आपके सामने वह अपने चोंगे को उलट देगा और उस दूसरे रंग को दिखाने से आप समझ जाएंगे कि उसका पाला बदल दिया है। तो यह वह युक्ति थी जो मैंने उसे सुबोध बनाने के लिए निकाली थी। मुद्रा राक्षस की कथा की तरह यह भी तनवीर की प्रस्तुति में भी एक गतिशील तनाव है। केवल घटनाक्रम में नहीं, चरित्रों और मनोदशा में भी यह तनाव निरंतर बना रहता है। शैथिल्य का अवकाश नहीं है, जिन स्थलों पर संवाद नहीं है, अभिनेताओं की केवल भावपंगिमाएं उनकी भाषा है, वहां पर उस तनाव को बनाए रखना कठिन साध्य था। वे छत्तीसगढ़ी कलाकार जो अपने हास्य व्यंग और साहस अभिनय के लिए जरिए एक खास पहचान बना चुके थे, उस प्रस्तुति में अपनी आंगिक भाषा के अत्यंत संतुलित प्रयोग से उस तनाव को सूक्ष्मता के साथ संप्रेषित करते हैं। उनकी चौकस आंखें, हाथों और चारियों का सटीक इस्तेमाल इस नाटक को नई उत्तेजना प्रदान करता है। खासतौर से चाणक्य की भूमिका में रामचंद्र ने अपनी चारी का बहुत प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। अधिकांश स्थलों पर उसी गति में चीते की सी आक्रामक शक्ति है। वह अपने मस्तिष्क में होने वाली उथल पुथल से बेचैन है और निरंतर पंजों के बल पर चलता हुआ नजर आता है। उसकी आंखें भाषा शाब्दिक भाषा पर आश्रित रही, शब्द उसके अंतर्द्वंद को इतने असरदार तरीके से व्यक्त नहीं करते जितने असरदार तरीके से उसकी मुद्राएं और भंगिमाएं करती हैं। प्रस्तुति की समाप्ति के बाद मैंने रामचंद्र से पूछा कि क्या यह चारी अर्थात चलने का तरीका तुम्हें अभी तरवीर ने बताया है। उसने कहा, नहीं, इसकी मैंने ही तलाश की है। हुआ यह था कि अपने जासूसों की को चारों तरफ भेज देने के बाद चाणक्य बेताबी से खबरों का इंतजार कर रहा है। मेरी सहज चाल से असंतुष्ट होकर अभी तनवीर ने उसे कहा था, रामचंद्र तुम इस समय इतने इत्मीनान से नहीं चल सकते, तुम्हारे मन में कई विचार एक साथ मुड़ रहे हैं, तुम्हारा दिमाग होने वाली घटनाओं के प्रति पूरी तरह जागरूक है और तुम दिल और दिमाग से लगातार स्तुति के लिए तैयार हो रहे हो। मैंने उनकी बातों को अच्छी तरह समझने की कोशिश की। जब चाणक्य को एक जासूस की यानी खबर मिलती है तो मैं मंच की एक सिरे से दूसरे सिरे तक तेजी से आता हूँ। इस चाल को देखकर साहब ने कहा, बस बस रामचंद्र मुझे यही चाहिए, नाटक की घटनाओं के साथ जरूरत के मुताबिक इसे फिर बदल करो, लेकिन ऐसा ही दिमागी तनाव के साथ। रामचंद्र के साथ हुए इस संवाद से अभी तनवीर प्रशिक्षण पद्धति का परिचय मिलता है। वे अभिनेता पर अपना ज्यादा अंदाज थोपते नहीं, अभिनेताओं के अंदर से ही वह अंदाज किस तरह निकल कर लाया जा सकता है वह खूब जानते हैं। इसलिए उनकी प्रस्तुतियों में चाहे वह कितने ही विभिन्न स्तरों के नाटक हों, उनके अभिनेता अत्यंत सहज नजर आते हैं। मुद्रा राक्षस के बाद हबीब तनवीर ने सन 1977-78 में लगभग एक ही कथाक्रम पर आधारित भास के तीन नाटकों को एक साथ प्रयोग कर नया नाटक प्रस्तुत किया, दुर्योधन शीर्षक से। पंचरात्र, दूतवाक्य और उरुबंक की कथाओं के केंद्र में दुर्योधन है। भास ने उसे खलनायक की तरफ चित्रित नहीं किया, खासतौर से उरुभंग का दुर्योधन अपनी समस्त कमजोरियों शक्तियों के साथ उभर कर आता है। एक विशेष मार्मिक स्थल वह है जब दुर्योधन अपने अंतिम समय में पुत्र दुर्जय को उपदेश देते हुए पश्चाताप के जरिए अपने मन को शुद्ध कर लेता है और अंततः स्वर्ग के लिए विमान पर सवार होकर उसकी आत्मा स्वर्ग में स्थान पाती है। इन तीनों नाटकों का रूपांतर अभी तनवीर ने छत्तीसगढ़ी में किया और पंडवानी के अनेक प्रसंगों को इसमें जोड़कर एक नए कलेवर में प्रस्तुत किया। यदि पंडवानी के मूल प्रसंगों को संपादित करके वे अर्जुन का स्वार्थी शीर्षक से इसे सन 1974 में प्रस्तुत कर चुके थे, लेकिन वास के इस नाटक त्रय में पंडवानी को कोरस की तरह पेश किया गया। यह प्रयोग भी बेहद दिलचस्प था और सफल भी रहा, लेकिन इस प्रयोग ने उन्हें जो जमीन दी थी उसका भरपूर उपयोग उन्होंने भट्ट नारायण के संस्कृत नाटक वेणी श्रृंगार की प्रस्तुति में किया। सन 2002 में निर्देशित इस नाटक की प्रस्तुति के समय तक छत्तीसगढ़ के आंचलिक कलाकार देश और विदेश में नाटकों के अनेकानेक प्रदर्शन कर चुके थे और भाषा की दृष्टि से वे अत्यंत संपन्न हो चुके थे। इसीलिए मुद्रा राक्षस में भी भाषा की दृष्टि से उच्चारणों के अर्थ में उन्होंने कोई कठिनाई नहीं हुई और वेणी श्रृंगार में तो ये कलाकार कुछ कदम और आगे नजर आते हैं। भट्ट नारायण ने महाभारत के प्रसंग को अद्भुत नाटकीय गुम्फन प्रदान किया है। दुर्योधन की राज्यसभा में द्रौपदी अपने चीरहरण से दुखित और क्रोधित होकर प्रतिज्ञा करती है कि वह केशों की सज्जा तभी करेगी जब वह दुशासन और दुर्योधन के वध से अपने अपमान का बदला चुका लेगी। द्रौपदी की वेणी का संहार सज्जा है इस नाटक की मूल कथा है। भट्ट नारायण ने इस कथा में राक्षस सारवाक के चरित्र को कल्पना के द्वारा उसकी नाटकीयता में जो अभिवृद्धि की है वह अनुपम है। दुर्योधन और भीम का गदा युद्ध चल रहा है। राक्षस सारवाक जो दुर्योधन का हित चिंतक है, एक ब्राह्मण का छद्म वेश धारण करके युधिष्ठिर के शिविर में पहुंचता है जहां द्रौपदी आतुरता से युद्ध का परिणाम जानने को उत्सुक है। ब्राह्मण वेश में चारवाक द्रौपदी को यह झूठी खबर देता है कि दुर्योधन ने गदा युद्ध में भीम को मार डाला और अर्जुन से उसका युद्ध हो रहा है। अर्जुन दुर्योधन के पराक्रम के सम्मुख टिक नहीं पा रहा है और किसी भी क्षण दुर्योधन की विजय हो सकती है। द्रौपदी चारवाक की छत्म बातों पर विश्वास के कुशोकाकुल होती है और शिविर में दुर्योधन के पहुंचने से पहले चिंता में कूद कर आत्मदाह की तैयारी करती है। चारवाक अपनी इस कुटिलता पर आत्ममुग्ध हो जाता है और तभी भीम दुर्योधन का वध करके शिविर में लौटता है, लेकिन द्रौपदी भीम को दुर्योधन समझकर उसे ललकारती है। भीम का सारा शरीर दुर्योधन के रक्त से स्नात है और द्रौपदी भीम को देखकर भी पहचान नहीं पा रही। केवल द्रौपदी ही नहीं, शिविर के अन्य लोग भी भीम को दुर्योधन समझने की भूल करते हैं और एक अत्यंत आकर्षक नाटकीय स्थिति का जन्म होता है। यही प्रसंग इस नाटक को अत्यंत विशिष्ट बनाता है, लेकिन संस्कृत नाटकों के आचार्यों ने इसे श्रेष्ठ नाटकों की श्रेणी में स्थान नहीं दिया। उनकी मान्यताएं इसी निकष पर आधारित थी जिनका जिक्र पहले किया जा चुका है। फिर अभी तनवीर ने इस नाटक को क्यों चुना, इस संबंध में उनके शब्द। वेणी श्रृंगार के बारे में कहा गया कि उसका ढांचा कमजोर है। यह भी आरोप लगाया गया कि उसका चौथा और पांचवा अंक गैर जरूरी है। मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ। मैंने तो यह देखा कि 6 अंकों में महाभारत की लगभग सारी कथा का जाना अपने आप में कमाल है। रही बात जरूरत से ज्यादा लंबे लंबे संवादों की, तो ये ऐब चौथे अंक में जरूर है जिसमें सुंदरक लगातार बहुत सुंदर कथा सुनाता है, लेकिन मेरी नज़र में इस कारण नाटक के ढांचे को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। आखिर नाटक प्रस्तुत करते समय निर्देशक जरूरत के अनुसार काट छांट करता ही है। खासतौर से शासकीय नाटकों में अक्सर यही करना पड़ता है, चाहे वो शेक्सपियर हो या कालिदास, शूद्रक हो या विशाख दत्त। चुनाचे मैंने नाटकों में से बहुत से हिस्से काट दिए हैं, खासतौर से सुंदरक के संवादों को बहुत कम कर दिया है। इस नाटक के कांट छाट में भी अभी तनवीर ने कथा प्रभाव को खंडित नहीं होने दिया। इस प्रस्तुति में पंडवानी नायकों को कोरस के रूप गायकों को कोरस के रूप में प्रस्तुत किया गया था। जो प्रसंग पंडवानी के प्रसंगों में कहे जा रहे थे उनका अपने पुनरावृत्ति का दोष पैदा कर सकता था, इसीलिए उन्होंने ऐसे स्थलों का काट दिया। मोड़ी संहार के मूल पाठ के में काट छांट के बारे में हबीब तनवीर ने कहा, निर्देशक जब किसी नाटक के संवाद काट कर कम कर देता है तो उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। मैंने भी नाटक को इस दृष्टि से नहीं काटा कि कहीं कहीं संवाद जरूरत से ज्यादा लंबे थे, बल्कि मूल घटनाओं को रखते हुए इसीलिए भी नाटक को कुछ छोटा कर दिया कि प्रस्तुति में पंडवानी के माध्यम से भी कुछ कहना चाहता था। चुनाचे पंडवानी में अगर द्रोणवाद पेश किया जाए तो नाटक के संवादों में सुधराने की क्या जरूरत। इसी तरह तीसरे अंक में राक्षस राक्षसी का प्रवेश निकाल दिया गया, क्योंकि छत्तीसगढ़ी पंडवानी में राक्षसों का यह प्रसंग मौजूद है और इसे वे एक नए और बेहद ही रोचक ढंग में पेश करते हैं। इसके अलावा इस प्रसंग में नाटक की विषय वस्तु ज्यादा गहराई पैदा करना भी मुझे अवसर मिल रहा था। इस तरह वेणी संहार में हबीब तनवीर ने संस्कृत नाटक के कथ के समानांतर पंडवानी की कथा गहन शैली को योजक सूत्र के रूप में प्रस्तुत करते हुए इस प्रयोग को नया आस्वाद दिया। इससे पूर्व के सभी संस्कृत नाटकों में कथा सूत्र को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अलग से गीत लिखे थे जिनकी धुनें पारंपरिक लोक संगीत से ली गई थी। महेंद्र विक्रम के नाटक भगवद जुकियम की प्रस्तुति में भी हबीब तनवीर ने स्वयं गीत लिखे। यह प्रसन्न भी अपने कथा प्रसंग में अद्भुत है। एक ओर परम ज्ञानी सन्यासी और दूसरी ओर परम सुंदरी गणिका अज्जुकी। एक रोचक स्थिति में सन्यासी अपनी देह छोड़कर गणिका के मृतदेह में अपनी आत्मा प्रविष्ट कर देता है। यमदूत गणिका की आत्मा सन्यासी के देह में प्रविष्ट कर देता है। सन्यासी अचानक गणिका की तरह व्यवहार करने लगता है। गणिका सन्यासी के आत्मज्ञान संबंधित तत्वों को धारण करके दार्शनिक मुद्दा अपना लेती है। यह मनोरंजक स्थिति केवल हास्य से ही उत्पन्न नहीं करती, वरन सन्यासी के लोग भी मनुष्य के शिष्य के माध्यम से धार्मिक आडंबर पर भी गहरा प्रश्न चिन्ह लगाती है। शूद्रक की तरह महेंद्र विक्रम भी राजा थे। संस्कृत नाटकों की विलक्षणता का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि दो राजा अपने समय के प्रचलित पाखंड और आडंबर पर भरपूर प्रहार करने के लिए ऐसे साहित्यिक कृतियों की रचना करते हैं जो अनेक शताब्दियों के बाद भी प्रासंगिक है और आज भी उतने विचारोत्तेजक। हबीब तनवीर ने जिन संस्कृत नाटकों की अब तक प्रस्तुतियां की हैं वे उनकी सामाजिक प्रतिबद्धता और सामयिक भावबोध को भी प्रतिबिंबित करती हैं। भास, भवभूति, शूद्रक, विशाख दत्त, महेंद्र, विक्रम आदि सभी रचनाओं के नायक भी विचित्र हैं। उनके सहायक भी संभवतः अधम प्रकृति के माने जाएंगे। ये चरित्र ही अंततः छद्म, कुटिलता, षड्यंत्र और शोषण की समाप्ति में सहायक होते हैं। इन नाटकों में नाट्यशास्त्र में वर्णित सूत्रों का कट्टर अनुपालन नहीं किया गया है। शास्त्र सम्मत होकर भी वे शास्त्र के नियमों का उल्लंघन करते जान पड़ते हैं। इन नाटकों में नाट्यशास्त्र के वर्णित प्रयोग धर्मिता के लिए समय के अनुसार इस तरह की छूट ली गई है जो उन्हें सार्वकालिक और सार्वजनिक बनाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन सभी नाटकों की कथा वस्तुएं और उनके नायक हमारे समय के प्रश्नों से साक्षात्कार करने में समर्थ हैं और असानुभूति के साथ एक गहरा विचार विदर्शक मन प्राण पर छोड़ देते हैं। संस्कृत नाटकों के प्रति पूरी तरह निष्ठा माना कर उन्होंने उन नाटकों के अंदर से ही उनके प्रयोग की विधि खोजने की चेष्टा की। शास्त्र या ग्रंथों के आधार पर उन समस्याओं का समाधान उनके रंगकर्म को स्वीकार्य नहीं था। शास्त्र का प्रयोग न करके उन्होंने नाट्य शास्त्र को ही सही मायने में प्रयोग के शास्त्र के रूप में स्वीकार किया और इस प्रयोग धर्मिता के सृजनात्मक जिद के जरिए वे निरंतर अपने समय और अपने लोक से भी जुड़े रहे। नाट्यशास्त्र के संबंध में हबीब तनवीर की दृष्टि उन्हें भारतीय रंगमंच के अप्रतिम निर्देशक के रूप में प्रतिष्ठित करती है।